ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। रविवार के उत्सव में कार्तिक के महीने का आज अंतिम दिवस, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने हमें विप्रलंब भाव का जो महत्व बताया अपने स्वयं के उदाहरण से, वो इस भौतिक संसार में हम साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब ऐसे दिन आते हैं जैसे आज का दिन, आखिरी दिन कार्तिक के महीने का, जब विशेष रूप से हम सब साधक जो कि भगवान के कीर्तन में और भगवान के श्रवण में, लीला श्रवण में जो इस पूरा महीना निमग्न रहे, ऐसा नहीं है कि हम कल से नहीं रहेंगे निमग्न, लेकिन कार्तिक के महीने की जो विशेषता है वो अपने आप में एक अनोखी विशेषता है। कार्तिक के महीने का जो वातावरण है, हालांकि कलयुग के प्रभाव से लग नहीं रहा कि कार्तिक है, लग रहा है जन्माष्टमी मना रहे हैं हम, परंतु हमें भगवान श्री कृष्ण की किसी भी उत्सव में अपनी चेतना से भाग लेना है, और यदि हमारी चेतना उसमें निमग्न है तो हम उस लीला में भी प्रवेश कर सकते हैं। भगवान ने ऐसा सु अवसर हम बद्ध जीवों को दिया है इस भौतिक संसार में। तो कार्तिक के महीने के पश्चात प्रारंभ होता है मार्ग शीर्ष, और मैं इन दोनों महीनों के विषय में सोच रहा था कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये दो महीने, कार्तिक और मार्गशीर्ष। कार्तिक में भगवान ने जो अपनी सुमधुर लीलाएं की, श्रीमद् भागवत, वो कार्तिक के महीने की महिमा हमें सुनाते हैं, और मार्गशीर्ष महीने की महिमा भगवद गीता। तो हमारी साधना भक्ति में ये जो दो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत और भगवद गीता, ये कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने से हम प्रेरणा लेते हैं। और जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस भावना से, जिस क्षमता से मेरी शरण आता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसी प्रकार आदान प्रदान करता हूं। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि हम जिस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, क्या भगवान भी उसी प्रकार से करते हैं? क्या ये श्लोक जो भगवान ने गीता में कहा, लिटरली यदि समझे श्लोक को, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जब भगवान आदान प्रदान करते हैं तो भगवान का आदान प्रदान हमारे आदान प्रदान की तरह नहीं हो सकता। इसलिए जब अक्सर हम ये उदाहरण देते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान अनगिनत कदम बढ़ाते हैं, और इसी में देख लीजिए कि भगवान के अनगिनत कदम वामन देव के दो कदम कितने थे, अनगिनत छोड़ दीजिए, उनके दो कदमों ने इस पूरी सृष्टि को नाप लिया था, इस पूरी सृष्टि को अपने चपेट में ले लिया था। तो अनगिनत कदम भगवान के, जो हम इस सिद्धांत से समझते हैं, तो उसकी कोई गणना नहीं। तो मैं सोच रहा था कि कार्तिक के महीने में हम दीप दान करते हैं, इस पूरा महीना हमने कितने दीप अर्पित किए होंगे। तो कार्तिक के महीने में हम दीप दान करते हैं, और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि ठीक है हमने अपनी तरफ से दीप दान किया तो भगवान ने अपनी तरफ से क्या किया, क्या भगवान दीप दान करते हैं, ये प्रश्न है। तो कार्तिक के महीने में हम दीप दान करते हैं, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान दीप दान करते हैं, कैसे? भगवद गीता में भगवान कहे हैं ज्ञान दीपे न भास्वता, दीप भगवान कहते हैं, भगवान का दीप दान क्या है, ज्ञान दीपे न। तो हम छोटा सा एक वो मिट्टी का दीप अर्पित करते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान को हम ये दीप अर्पित करके और भगवान की सुंदरता बढ़ाएंगे, और भगवान हमारी सुंदरता कौन से दीप अर्पित कर कर बढ़ाते हैं, देखिए भगवद गीता का जो ज्ञान। इसलिए हम जो दामोदर लीला में सुनते हैं दो उंगली का सिद्धांत, तो हमारी तो छोटी सी उंगली है, परंतु भगवान की जो उंगली है, कृपा की उंगली, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना कि भगवान जो अपने अनगिनत अवतारों में आते हैं और आकर अपने संदेश, अपनी लीलाएं, नाम गुण रूप लीला हमें देकर जाते हैं, वो भगवान का दीपदान है अनगिनत तरीके से। और ऐसा नहीं कि भगवान केवल एक महीना दीपदान करते हैं, हम अनगिनत तरीके से भगवान के दीपों को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि भगवान के धाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के दिए हुए ग्रंथ, प्रतिनिधि, भक्त, अर्च विग्रह, प्रसाद इत्यादि। तो कल हम हमारे परिवर्तन के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे भगवान की महानता और भगवान की मधुरता, कृष्णाज ग्रेटनेस एंड कृष्णा स्वीटनेस। और हम साधकों के लिए ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। तो यदि हम कार्तिक के महीने में देखें तो भगवान की मधुरता ज्यादा दिखती है, और मार्गशीर्ष का महीना भगवान की महानता। तो एक श्लोक में पढ़ रहा था मुकुंद माला स्तोत्र से, और इस श्लोक में, इस एक श्लोक में भगवान महाराज कुलशेखर ने भगवान श्री कृष्ण की महानता और मधुरता, महानता और मधुरता, इन दोनों को एक श्लोक में दर्शाया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जयति जयति कृष्ण देवो देवकी नंदनोयम्, जयति जयति वृष्णि वंशः प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशः मुकुंदः। बहुत ही सुंदर श्लोक है जो पहली लाइन है इस श्लोक की, जिसमें भगवान के विषय में कहा गया है, जयकार हो उन भगवान का जो देवकी नंदन हुए, माता देवकी के पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए। तो अब देखिए, देवकी के पुत्र भगवान बने तो भगवान ने अपनी मधुरता इसमें दिखाई है कि नहीं। एक जो छोटा सा शिशु होता है वो असहाय अवस्था में माता पर निर्भर रहता है, अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। तो भगवान को मथुरा से गोकुल भी जाना था, तो वो भगवान हालांकि नंद वसुदेव को कह रहे हैं, वसुदेव जी को बोल रहे हैं कि इस प्रकार से मुझे ले जाओ पैदा होने से पहले, तो वसुदेव जी को बोल रहे हैं इस प्रकार से मुझे ले जाओ, तो वसुदेव जी ये प्रश्न पूछे कि यदि आप सबको जानते हो कि आप कैसे जाओगे तो आप ही चले जाओ ना, इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूं। तो भगवान अपनी मधुरता दिखा रहे हैं कि नहीं, मैं आप पर निर्भर हूं, महानता दिखाई बताने के लिए कि कैसे ले जाओ, और मधुरता दिखाई अपनी निर्भरता माता पिता पर। जैसे भगवान जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म। तो चतुर्भुज रूप जो भगवान का है, यह चतुर्भुज रूप भी भगवान की महानता और मधुरता दिखाता है। कैसे? क्योंकि शंख चक्र गदा और पद्म ये जो सुसज्जित भगवान इन चार आयुधों से, तो इसमें भगवान दिखाते हैं कि जो दो आयुध हैं वो भगवान की महानता और दो आयुध भगवान की मधुरता, गदा और चक्र। गदा और चक्र वो राक्षसों के लिए, और शंख और पद्म वो भक्तों के लिए। जब भगवान राक्षसों का वध करते हैं तो चक्र सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं, और सुदर्शन चक्र से जब भगवान किसी का सर धड़ से अलग करते हैं तो पूरी गारंटी के साथ कि वो मरा कि नहीं, फिर गदा से उसे मार मार के और तमाम करते हैं उसका काम। डबल इंपैक्ट, चक्र और गदा। तो चक्र और गदा से भगवान की महानता दिखती है, और पद्म कमल का पुष्प और जो शंख है उससे भगवान की मधुरता दिखती है। तो भगवान कंस के कारागृह में जब चतुर्भुज रूप में इन आयुधों के साथ अवतरित हुए तो भगवान माता देवकी को ये आश्वासन दे रहे थे, क्योंकि माता देवकी अब चिंतित कि अभी अभी मेरा ये जो पुत्र पैदा हुआ, ये पैदा होते ही अब निकल पड़ रहा है अपने मिशन पर, पैदा होते ही, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ और ये अपने मिशन पर निकल रहा है मेरा पुत्र। तो माता देवकी चिंतित थी, क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना छोटा सा शिशु मान रही थी। तो माता देवकी भगवान में केवल मधुरता देख रही थी, जैसे माता अपने शिशु में महानता नहीं देखती, वो क्या देखती है? केवल मधुरता देखती, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो किसी बड़े कंपनी का सीईओ बन जाए, लेकिन उसकी जो माता है वो उसे डांट फटकार कर रखती है। तो माता देवकी के अंदर केवल वो मधुर भाव था और इसलिए चिंता थी उनके अंदर। तो भगवान ने फिर अपने सारे आयुध दिखा दिए कि देखो मैं पूरा लोडेड जा रहा हूं, कोई आप चिंता मत करो। तो भगवान ने अपनी मधुरता और महानता माता देवकी को इस प्रकार से दिखाई। तो ये जो श्लोक आज हमने लिया, जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, कि देवकी के नंदन भगवान श्री कृष्ण, हालांकि वो उस वंश में पैदा हुए। तो अगली जो पंक्ति है इस श्लोक की, जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीपः। किसी को लगेगा कि यादव कुल में भगवान पैदा हुए, वृष्णि वंश में भगवान पैदा हुए, जैसे अक्सर हमने इसकी चर्चा की थी, आजकल भी कोई यदि यादव होता है तो बोल देता, अरे हम भी तो यादव कुल के ही हैं, वो आपके कृष्ण हमारे कुल में पैदा हुए थे। परंतु महाराज कुलशेखर कहते हैं वृष्णि वंश प्रदीप कि वो कोई साधारण वृष्णि वंशी नहीं थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो यादव थे वो भगवान श्री कृष्ण को अपने जैसा ही एक उन्हीं के वंश का मान रहे थे। उदाहरण दिया गया है कि जैसे मछलियां जब चंद्र उदित होता है तो मछलियां, समुद्र की मछलियां, वो उदित चंद्र को देखकर समझती हैं कि अरे हमारे ही तरह एक और कोई मछली सफेद दिखने वाली आज वहां पर प्रकट हुई है। परंतु जैसे जैसे वो चंद्र आकाश मंडल में जाता है तब उन मछलियों को समझ में आता है कि नहीं, ये कोई हमारे तरह मछलियां नहीं है। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण चंद्र जन्मे तो बहुत सी मछलियां उस कुल की, उन्होंने ये सोचा कि ये भी हमारे ही तरह एक और शिशु, हमारे ही वंश का एक और कोई जन्मा है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार इस उदाहरण को देते हुए उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक गांव में एक वृद्ध महिला, उसके जो सगे संबंधी वो सब जो उसकी सत्ता हड़पने के लिए पीछे पड़े हुए थे, उसका खेत, उसका घर, तो ये वृद्ध महिला ये हाई कोर्ट के जो जज, हाई कोर्ट के जज के पास इस महिला को ले जाया गया और हाई कोर्ट का जज जो है उसने इस वृद्ध महिला की स्थिति को देखा और पूरा जो केस है स्वयं हाई कोर्ट जज ने हैंडल किया और वो सॉल्व किया उसकी समस्या। तो ये वृद्ध महिला अब इतना प्रसन्न और इतना कृतज्ञ हुई इस हाई कोर्ट जज के प्रति, तो वृद्ध महिला ने हाई कोर्ट जज को अपना आशीर्वाद दिया कि मेरा आशीर्वाद हो आपके ऊपर कि आप बहुत तरक्की करो और एक दिन हवलदार बनो। तो वो उसका दृष्टिकोण था, उसे पता नहीं था कि उसे ही लगता था कि मेरे गांव का जो हवलदार है सब उससे डरते हैं, तो ये सबसे बड़ा यही है। तो उसी प्रकार से जब भगवान अपनी मनुज लीला करते हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रित, गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें वो साधारण एक मनुष्य मान लेते हैं। तो इस श्लोक में ये जो पंक्ति में कहा गया है कि वृष्णि वंश प्रदीप, वो कोई साधारण वृष्णि वंशी नहीं थे। फिर आगे महाराज कुलशेखर कहते हैं जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, भगवान श्री कृष्ण के अंग इतने कोमल, न केवल कोमल बल्कि सुकोमल भगवान श्री कृष्ण के अंग। और ऐसे अब इसमें क्या दिखता है, भगवान की मधुरता। जिस किसी भी के कोमल अंग होते हैं तो उसमें उसकी मधुरता दिखती है। तो भगवान की मधुरता महाराज कुलशेखर बता रहे हैं। और फिर अंतिम लाइन में वो कहते हैं, जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद, कि उन्हीं कोमल अंगों से पूरी पृथ्वी का भार ये उठाए हैं और पूरी पृथ्वी का भार नाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसमें भगवान की महानता महाराज कुलशेखर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान की मधुरता और भगवान की महानता, यह हम साधकों के लिए इसे हमारे जीवन में उतारना, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी साधना भक्ति में भगवान का नाम रूप गुण लीला, हम जो भगवान का नाम लेते हैं तो हम इस अपेक्षा में भगवान का नाम ले रहे हैं कि भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीला जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। तो यदि हम भगवान की महानता और मधुरता को लें सर्वप्रथम भगवान के नाम के संदर्भ में, तो भगवान के नाम के संदर्भ में यदि हम देखें, कल भी इसकी चर्चा हमने की थी कि भगवान का जो नाम है उसकी महानता यह है कि हमारे अनगिनत जन्मों के जितने पाप हैं, और न केवल पिछले पाप बल्कि आगे आने वाले पाप, वो भी कोई व्यक्ति यदि पूर्ण रूपेण फुल टाइम करना भी चाहे तो भगवान का एक नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, भगवान का एक नाम एक बद्ध जीव के अनगिनत पापों से उसको मुक्ति दिला सकता है। तो ये भगवान के नाम की महानता है और भगवान के नाम की मधुरता है कि उसके साथ साथ भगवान कृष्ण प्रेम प्रस्थापित करते हैं उस साधक के हृदय में। जैसे रामायण की एक छोटी सी कथा है, जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और अब अयोध्या लौट चुके थे प्रभु श्री राम, विभीषण को राजा बना चुके थे, लंका का राजा अब विभीषण, लंकेश विभीषण बन चुके थे। तो अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो न्योता सब जगह पर बांटा गया था और विभीषण वो लंका से आ रहे थे प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक को अटेंड करने। तो विभीषण अपने पार्षदों के साथ, क्योंकि वो उस कुल के थे तो विभीषण के कुछ पार्षद थे जो राक्षस योनि के थे, तो वो विभीषण के साथ अब अयोध्या आ रहे हैं। तो अयोध्या आने के लिए उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। समुद्र पार किया उन्होंने, क्योंकि विभीषण थे तो समुद्र वो पार कर सके। और समुद्र पार करने के पश्चात जब अयोध्या में उन्होंने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक अटेंड किया, उसके पश्चात विभीषण ने इन उनके पार्षदों से कहा कि अब तुम लोग लौट जाओ और मैं कुछ समय पश्चात आऊंगा। तो अब हुआ क्या था कि वो सेतु इन्होंने तो पार कर दिया विभीषण इनकी सहायता से, परंतु पार करने के पश्चात अब वो सेतु जो है वो नष्ट हो चुका था। तो अब ये वापस कैसे लौटेंगे? न तो सेतु, न वहां पर कोई जहाज, कोई श्रीलंकन एयरलाइंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब रिटर्न कैसे, इतना बड़ा समुद्र बीच में। तो गए अपने स्वामी राजा विभीषण के पास। तो विभीषण वो समुद्र के तट पर पहुंचे उनके साथ, और उन्होंने एक वृक्ष से एक पत्ता लिया और उस पत्ते पर कुछ लिखा और उसे एक कपड़े में बांधकर उनसे कहा कि इसे हाथ में पकड़कर रखो और छोड़ना मत इसे, बिल्कुल इसे छोड़ना मत, और चलना शुरू करो समुद्र में। क्या चलना शुरू करो, विश्वास रखो, इसे छोड़ना मत। तो वो हाथ में वो पोटली लिए, वो चलना शुरू किए। तो शुरुआत में तो जो पानी था वो केवल घुटनों तक था, लेकिन वो चलते गए चलते गए चलते गए समुद्र के मध्य तक आ गए। पानी अब तक घुटनों तक ही है। तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या अद्भुत हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि इसमें दिया क्या। उन्होंने तो उस पोटली को खोला उन्होंने समुद्र के बीच में, और पत्ते पर लिखा हुआ था राम, राम का नाम पत्ते पर लिखा हुआ था। तो उनमें से एक ने सोचा कि क्या ये पत्ता और ये जो लिखा हुआ है, क्या ये हमें बचा रहा है, देखते हैं कि इसे छोड़ने से क्या हो। तो जैसे ही छोड़ दिया उस पत्ते को, तुरंत सामने से सुनामी, इतनी बड़ी लहर समुद्र की, और सोचिए समुद्र के मध्य में थे ये लोग, क्या हालत इनकी हुई होगी। तब तुरंत ढूंढ ढांड के वो पत्ते को फिर पकड़ा, और तब जाकर जैसे ही पत्ते को पकड़ा, पुनः उनका विश्वास विभीषण द्वारा दिया गया वो भगवान श्री राम का नाम जैसे उन्होंने पकड़ा, तुरंत वो समुद्र वो घुटनों तक आ गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। तो भगवान के नाम में भगवान की महानता और भगवान की मधुरता, कि इस प्रकार से भगवान के जो नाम हैं वो भगवान की महानता को दर्शाते हैं। और जैसे षड गोस्वामी, वो जब भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, जैसे रूप सनातन गोस्वामी, तो वो भगवान की अष्टकालीन लीला में वो पहुंच जाया करते थे, जैसे हरिदास ठाकुर इत्यादि। तो वो भगवान की मधुरता का एहसास लेते थे। इसके पश्चात यदि हम देखें भगवान का रूप, भगवान के रूप में भगवान की महानता और भगवान की मधुरता, तो वृंदावन में भगवान ने जितने राक्षसों का वध किया, एक भी राक्षस को भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। किसी भी राक्षस को भगवान ने कोई भी जैसे कोई चक्र या गदा या इस प्रकार से नहीं। यदि हम देखें कि भगवान के रूप की महानता, तो पूतना का वध, पूतना कितनी बड़ी थी, कितनी लंबी थी पूतना, 8 माइल। कितना यहां से नासिक रोड, 6 किलोमीटर है वो भी, ज्यादा है। तो 8 मील ये पूतना, इतना इसका बड़ा विकराल स्वरूप इस पूतना का, और भगवान इतने छोटे से ही रहे, 6 दिन के छोटे से भगवान। वो छोटे से भगवान, उन्होंने अब देखिए 6 दिन का बालक कितना बड़ा होगा। और भगवान ने केवल अपने होठों से पूतना के प्राण हर लिए, केवल अपने होठों से। तो भगवान के होठों की शक्ति देखिए, वही होठ से भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो भगवान की मधुरता, तो भगवान के रूप में, भगवान के होठों में हम भगवान की महानता देखते हैं पुतना उद्धार में, और भगवान की मधुरता देखते हैं रासलीला जब भगवान ने बांसुरी बजाई। और अन्य राक्षसों के विषय में भी हम यदि देखें तो जैसे शकटासुर, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में था शकटासुर, तो शकटासुर को भगवान ने केवल अपने पैरों के अंगूठे का स्पर्श किया, और वो भी भगवान कितने, अब 3 महीने के केवल। और ऐसा नहीं कि भगवान कुछ बहुत जोर से रनअप लिए थे, लात मारे उसको, लेटे हुए ऐसे ही, और ऐसे जैसे बच्चे अपने हाथ पैर फेंकते रहते हैं, तो भगवान ने अपना एक ऐसे बस स्पर्श किया वो शकट के ऊपर, और भगवान के पैरों का अंगूठा बस स्पर्श हुआ, और वो पूरा धराशाही, इतने बड़े बड़े उसके ऊपर बर्तन रखे हुए थे, सब रसों से भरे हुए, वो खाली नहीं था वो शकट। शकट जानते क्या है, वो खाली नहीं था, भरा हुआ था सब बड़े बड़े, नाना रस्य कूप भाजनम, सुखदेव गोस्वामी के, तो सब तिथर बिथर हुआ, और वो असुर उसका उद्धार भगवान ने इस प्रकार से किया। तो पूतना के लिए भगवान के होंठ, शकटासुर के लिए भगवान पैरों का अंगूठा, वो भी नख केवल थोड़ा सा, पूरा भी नहीं स्पर्श किया था। तृणावर्त, नेक्स्ट वन, तृणावर्त भगवान ने तो गले लग गए इसे, गले लगे तृणावर्त के, और भगवान ने तृणावर्त का कोई ऐसा गला नहीं दबाया, वो क्या बोल रहे टेटुआ, ये नहीं दबाया, ऐसा नहीं कि ऊपर जाने के बाद भगवान ऐसे दबा रहे हैं उसका गला, दबा रहे हैं गला, दबा के मार रहे हैं, नहीं, भगवान केवल भारी हो गए। जैसे कल हमने वो गोपाल जी की कथा सुनाई राधा गोपीनाथ मंदिर में, क्रिश्चन वो गोपाल जी, वो जब उसके सपने में गोपाल जी आए, तो हालांकि गोपाल जी छोटे से, नाम ही गोपाल जी, तो गोपाल जी छोटे से, लेकिन चैतन्य चरितामृत में गोपाल जी के विषय में कहा गया है महाभारी ठाकुर। चैतन्य चरितामृत में गोपाल जी का वर्णन किया गया है महाभारी ठाकुर या लय भारी ठाकुर। तो पता नहीं, एक मैंने इधर नासिक में एक रेस्टोरेंट का नाम था लय भारी, तो गोपाल जी हालांकि छोटे से, लेकिन चैतन्य चरितामृत के अनुसार महाभारी ठाकुर। तो वो छोटे से भगवान तृणावर्त को जब आलिंगन किए तो अचानक महाभारी ठाकुर हो गए, और तृणावर्त वो भगवान का वजन नहीं सहन कर पाया, तो भगवान ने केवल अपने वजन से खत्म कर दिया उसे। और देखिए भगवान की महानता इसमें, भगवान के रूप की महानता, कि भगवान महाभारी बने लेकिन दिखने में उतने से, आप यदि वो उस लीला का फोटो भी देखे होंगे, भगवान छोटे से। अब यदि कोई इतना वजन ले ले तो दिखने में समझ में आता ना कि हाँ वजनदार हो गया ये, लेकिन भगवान दिखने में वैसे ही हल्के से दिख रहे थे, लेकिन अंदर बहुत, आजकल लोग बाहर से बहुत दिखते हैं, अंदर से हल्का फुल्का, सब सब फुसका रहता है अंदर। उल्टा है आजकल। तो भगवान तृणावर्त को केवल अपने हाथों से आलिंगन किया और तृणावर्त का उद्धार उस प्रकार से हुआ। कालिया, अब देखिए कालिया के ऊपर तो भगवान ने केवल नृत्य किया, ये भगवान की रूप की महानता की केवल नृत्य कर करके कालिया को शुद्ध कर दिया भगवान ने। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है कि ये जो हमारी जिह्वा है ये भी कालिया जो सर्प था उसके फनों के समान, जैसे भगवान यहां पर नृत्य कर रहे हैं कालिया के ऊपर, तो ये हमारी जिह्वा है वो भी वो सर्प के समान फुफकारती रहती है, हर समय बाहर आती रहती है और इस भौतिक संसार का जहर पीने के लिए। तो इस जिह्वा के ऊपर जैसे कि कालिया ने अपने फनों के ऊपर भगवान को अनुमति दी और जगह दी नृत्य करने के लिए, उसी प्रकार से यदि हम अपनी जिह्वा पर भगवान के नाम को नृत्य करने के लिए एक अवसर देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अवश्य ही कालिया की ही तरह भगवान हमारे हृदय के जितने कलमश हैं, जहर हैं, उन सब से हमें मुक्त करेंगे। तो भगवान के यदि रूप को हम देखें तो भगवान ने अपने रूप के द्वारा अपनी महानता दिखाई अवश्य इन राक्षसों का उद्धार करने में, परंतु उसके साथ साथ भगवान के रूप की मधुरता भी बताई गई है कि इतने नाजुक। अब इसमें तो समझ में आता है कि भगवान कितने शक्तिशाली इन सब राक्षसों का वध करने में, उसके साथ साथ भगवान बहुत नाजुक कोमलांगो, वो जो तीसरी लाइन उस श्लोक की, मेघ श्यामल कोमलांगो, तो ये बताया गया है कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाया करती थी, अब माखन का रंग क्या होता है, माखन का रंग क्या होता है, नहीं, गाय के दूध का जो माखन निकलता है वो पीला होता है, पीला। तो जब भगवान को माता यशोदा माखन खिलाया करती थी तो यहां पर एक उदाहरण है भगवान के शरीर की नाजुकता, ध्यान से सुनिए। तो भगवान जब माखन खा, भगवान का रंग क्या है, श्याम, श्याम वर्ण के भगवान है और वो भी घन श्याम, जो बारिश का जो बादल है वो रंग के भगवान। तो भगवान जब माता यशोदा के द्वारा दिया गया माखन खाते और वो माखन जब भगवान के गले से नीचे जाता तो वो जाते हुए दिखता। यहां पर भगवान का जो श्याम वर्ण वाला गला वो माखन के रंग से क्या रंग का हो जाता, गौर रंग का हो जाता, गौरांग, इतना महीम भगवान का ये गला था, इतना महीम। इसलिए भगवान को जब माता यशोदा तांबूल भी खिलाती या राधा रानी तांबूल भी खिलाती तो तांबूल जो अंदर भगवान के मुख में वो लाल बन जाता, तो यहां से जब वो गुजरता भगवान के महीम गले से तो भगवान का ये जो महीम गला है वो लाल जैसा दिखता, इतने कोमल भगवान। नहीं समझ में आ रहा, वो हम लाल हो जाते हैं, वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ जाता है लाल पीले, लेकिन भगवान की महिमता बताई गई है। इसलिए कवि कर्णपुर वो कहते हैं कि भगवान की हथेली के विषय में, कि भगवान की जो हथेली है, जब भगवान हथेली को मुट्ठी में बांधते हैं तो वो मुट्ठी वज्र के समान बन जाती है राक्षसों के लिए, और वही मुट्ठी को जब भगवान खोलते हैं तो वो हथेली कमल की पंखुड़ी भी इस पर गिरती है तो वहां पर एक निशान आ जाता है, सोचिए, कमल की पंखुड़ी भी उस हथेली पर गिरती है तो निशान आ जाता है। इसलिए कहा गया है जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, भगवान का जो विग्रह है वो महान होने के साथ साथ इतना महीम, इतना नाजुक, इतना सुकोमल है। तो ये भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के गुण जैसे कि षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, छह ऐश्वर्य, और केवल छह ऐश्वर्य नहीं अनगिनत ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान, तो उसमें भगवान की महानता दिखती है इन सब ऐश्वर्यों में। और उसके साथ साथ भगवान का जो एक ऐश्वर्य है वैराग्य, उसमें भगवान की मधुरता दिखती है। भगवान के वैराग्य में भगवान की मधुरता दिखती है और अन्य ऐश्वर्यों में भगवान की महानता दिखती है। जैसे कि जरासंध, ये जरासंध ये ऐसा व्यक्ति था, मानना पड़ेगा इस जरासंध को कि ये जरासंध 17 बार भगवान श्री कृष्ण, 17 बार ना, 17 बार भगवान श्री कृष्ण से ये हारा। इसका मोटिवेशन देखो, वो जितनी भी बार हारता था कितना वो उसके, आजकल लोग बोलते ना पॉजिटिव थिंकिंग, कितना बड़ा ये ऑप्टिमिस्ट था ये जरासंध, कि 10 बार, 12 बार, 13 बार, 14, 15, 16 बार, 17 बार हारते हुए भी वो बार बार वो 21 अक्षोहिणी सेना लेके खड़ा हो जाता था फिर से। तो आज की दुनिया में जरासंध सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता था। कोई अगर कोई बोलता है कि अरे मैं तो मेरे जीवन में हर समय हारा हुआ, तो जरासंध मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, 17 बार लेकिन फिर भी मैंने हारने में, फिर मैं जा के। और भगवान का वैराग्य देखो, भगवान उसे मारते नहीं थे, बलराम जी बोलते थे अरे उसे खत्म कर, नहीं 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 नहीं, वो हमारा काम कर रहा है, अरे यहां वहां कौन इन सब आलतू फालतू राक्षसों को ढूंढता फिरेगा, ये ला रहा है ना। तो जरासंध, अब देखिए जरासंध, एक तो क्यों हम बोल रहे हैं कि जरासंध आज की दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता था, क्योंकि जरासंध न केवल वो खुद इतना मोटिवेटेड था भगवान से युद्ध करने के लिए, लेकिन 21 अक्षोहिणी सेना को कन्विंस करके लाता था वो। सोचिए कि जिनको सब पता है कि ये इसको भगवान श्री कृष्ण ने और उनकी सेना ने धज्जियां उड़ा दी पिछले युद्ध में, फिर जाकर वो सबको कन्विंस करता, नहीं 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 इस बार मैं आपको आश्वासन देता हूं कुछ नहीं होगा, चलो चलो। तो सोचिए उसका कन्विंसिंग पावर कितना रहा होगा जरासंध का, कि 17 बार 21 अक्षोहिणी सेना को, हर एक बार 21 अक्षोहिणी सेना को खड़ा करके वो लाता था। तो भगवान ने इसे मारा नहीं, और भगवान चाहते तो देखिए कितना बड़ा खिताब हासिल कर सकते थे जरासंध की, बहुत बड़ा वो राजा और योद्धा था, तो जरासंध को मारने का खिताब भगवान हासिल कर सकते थे, लेकिन वो दिया भीम, भीम को दिया तुम मारो। और मारने के बाद भी, हम कल इसकी चर्चा कर रहे थे, जरासंध का वध करने के बाद भगवान ने वो अपनी टेरिटरी नहीं बनाई, भगवान ने जरासंध का जो पुत्र सहदेव उसे नियुक्त किया, तुम बने हो राजा। वही भगवान हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो भगवान ने एक भी डिपार्टमेंट नहीं मांगा, मुझे क्या दे रहे हो या मेरे यादवों के लिए क्या है, नहीं, भगवान का वैराग्य जिसमें भगवान की मधुरता दिखती है। लीलाएं, भगवान की लीलाओं में यदि हम देखें तो महानता से परिप्लुत है भगवान की लीलाएं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने अपनी ऐसी ऐसी भी लीला की, जैसे दामोदर लीला, दामोदर लीला में भगवान ने महानता भी दिखाई मधुरता भी दिखाई। कैसे, महानता दिखाई कि इतनी रस्सियां माता यशोदा लेकर आई, भगवान बंध नहीं रहे। इसमें भगवान की महानता कि कमर उतनी सी भगवान की, रस्सियां इतनी मिलो लंबी, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे। ये भगवान की महानता। और फिर वही भगवान जिनको दुर्योधन ने भी एक बार, दुर्योधन ने दामोदर लीला ट्राई की थी और वो भी हस्तिनापुर में भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया तो दुर्योधन वो भगवान को बांधने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी ट्राई कर रहा था कि मैं भी थोड़ा दामोदर लीला करूं, देखता हूं कैसे कर पाता हूं। तो माता यशोदा के द्वारा भगवान बंधे गए। कैसे बंधे गए? भक्ति बद्धम। दामोदर अष्टकम में हम क्या गाते हैं? भक्ति बद्धम, भक्ति के द्वारा, मधुरता के द्वारा भगवान बंधे गए। ये भगवान की मधुरता दामोदर लीला में, महानता और मधुरता दोनों दामोदर लीला में दिखती है। जैसे रूप गोस्वामी अपने एक पद में वो गाते हैं कि माता यशोदा हर रात्रि छोटे से नन्हे से भगवान श्री कृष्ण गोपाल को वो कहानियां सुनाया करती थी, बेड टाइम स्टोरीज जिसे कहते हैं, तो कहानियां सुनाया करती थी। तो भगवान लेटे हुए माता यशोदा रामायण से सुना रही, रामायण की कथा सुना रही कि कैसे रावण भेष बदल कर आया और रावण सीता को हर ले जा रहा है, तो अचानक छोटे से भगवान श्री कृष्ण वो बेड पे खड़े हो गए, लक्ष्मण मेरा धनुष लेकर आओ। माता यशोदा देख रही इसे क्या हो गया। माता यशोदा पूछती, अरे क्या हुआ, मैं सुलाने के लिए मैं सुना रही थी स्टोरी, मेरा धनुष लाओ सीते मैं आ रहा हूं। अरे तो माता यशोदा, हालांकि वो लीला उन्हीं ने की है, परंतु माता यशोदा वो अपने भगवान को अपना ही बालक मान रही थी। बोले थे अरे ये लीला सुनने के लिए सुनो। अरे नहीं, मैंने की है ये लीला पिछले जन्म में की है लीला, क्योंकि उसके बाद माता यशोदा नरसिंह लीला सुना रही थी एक बार कि कैसे प्रहलाद को भगवान श्री नरसिंह देव ने बचाया, तो भगवान फिर खड़े हो गए, हां हिरण्यकशिपु। बैठ इधर, भगवान तुरंत वो मूड में आ गए एकदम। तो माता यशोदा देख रही है कि ये इतना सा मेरा छोटा सा, अचानक हुआ क्या कि बिजली की आवाज आई, बिजली की आवाज आते ही भगवान डर के माता यशोदा को आलिंगन कर लिए। माते माते, अब हिरण्यकशिपु से माते माते। तो भगवान, तो फिर माता यशोदा ने पूछा, तो उतर गई सारी नरसिंह लीला? तो इसमें भगवान ने, हालांकि वो नरसिंह भगवान के स्रोत ये छोटे से कृष्ण, परंतु माता यशोदा के सामने, माता यशोदा कहती थी कि अरे तुम बिजली की आवाज से, एक बिल्ली म्याऊं करती है, माता यशोदा ने कहा कि एक बिल्ली म्याऊं करती है तुम डर के मुझे चिपक जाते हो। लेकिन वही भगवान जो बिल्ली के म्याऊं से माता यशोदा को चिपक जाते थे, वही नरसिंह रूप उन्होंने लिया था जिसमें उन्होंने अपनी महानता दिखाई थी। तो वृंदावन में भगवान, हालांकि अपनी लीलाओं के द्वारा उन्होंने महानता दिखाई, परंतु ब्रजवासियों के सामने भगवान की महानता से ज्यादा भगवान की मधुरता, जैसे गोवर्धन धारण भगवान ने किया उस लीला में, भगवान अपनी महानता दिखा रहे 7 दिन 7 रात सामने सबके, लेकिन माता यशोदा वो केवल भगवान की जो हथेली है उस पर मसाज करी, शायद दुख रहा होगा, इतना बड़ा 7 दिन तक उठाया है ये नहीं वो प्रश्न पूछ रहे कि इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे इस छोटी सी उंगली में। और जब नीचे उतार दिया तो माता यशोदा ये सब नहीं पूछ रही कि बेटा कैसे किया तूने, उंगली कैसी, पहला प्रश्न उंगली कैसी। ये माता यशोदा केवल भगवान की मधुरता से ही आकृष्ट थी। तो भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं में भगवान ने अपनी महानता और अपनी मधुरता दर्शाई। इस भौतिक संसार में जैसे कि भगवद गीता का वो श्लोक है सातवें अध्याय का, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते। इस श्लोक में भगवान माया देवी की महानता और मधुरता बता रहे हैं, माया देवी की भी मधुरता बता रहे हैं कि दैवी हेश गुणमयी, जो पहला दो लाइन है इस श्लोक का, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, महानता कि दुरत्यया, भगवान की दैवी शक्ति कितनी महान है, कितनी दुरत्यया है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है तो ये जो इतना बड़ा भव सागर है इस भौतिक संसार का, वो जैसे एक वत्स पद में उसके निशान में कितना जल अंट सकता है, उस प्रकार से कोई पार कर सकता है। माया मेतान तरंतिते, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसे कि हमने रामायण की वो कथा सुनी कि भगवान का नाम उनके हाथ में था, हालांकि वो थे राक्षस कुल के, लेकिन विभीषण की कृपा से भगवान का नाम जब तक उनके हाथ में था तो वो पूरा जो समुद्र था केवल घुटनों के तट तक, उनके घुटनों तक था। उसी प्रकार से पूरा भवसागर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल हो, कितना भी गहरा हो, यदि हमें भगवान के नाम रूप गुण और लीला पर जो विश्वास दृढ़ हो तो हम उसे केवल अपने घुटनों तक ही रखेंगे। हालांकि भगवान रखेंगे लेकिन हमारा विश्वास उस नाम पे। तो जब भगवान कहते हैं माया मेतान तरंतिते, वो पार कर जाता है इस भौतिक संसार को इतनी आसानी से, तो उसमें भगवान उस शरणागति के द्वारा जब भक्त इस भौतिक संसार को देखता है तो वो मधुरता से देखता है, उसके अंदर कोई जटिलता नहीं रहती इस भौतिक संसार को देखने में। इसलिए इस्कॉन की भी स्थापना श्रील प्रभुपाद ने की। तो इस्कॉन की स्थापना में भी हम देखते हैं कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में भी लिखा, कृष्णा वॉज बॉर्न इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन। तो जैसे भगवान देवकी नंदनोयम, उस प्रकार से भगवान ने अपनी महानता और मधुरता दिखाई, तो इस्कॉन में भी भगवान अपनी महानता और मधुरता दिखा रहे हैं। जैसे इतनी भव्य तरीके से प्रचार हुआ जुहू का मंदिर, जुहू का मंदिर जब श्रील प्रभुपाद ने जुहू के मंदिर बनाने की योजना की, तो इतना भव्य मंदिर आज भी इतने वर्षों पश्चात, यदि भगवान श्री कृष्ण का कोई भव्य मंदिर उस बंबई शहर में है तो वो श्री श्री राधा रास बिहारी आज तक। और सोचिए कितने वर्ष हो गए, 20 वर्ष पहले श्रील प्रभुपाद ने इतना विशाल मंदिर, वो जगह पर केवल कुछ चूहे और कीचड़ और बस ये सभी, वहां पर कोई वहां पर रहता भी नहीं था। आज यदि किसी को एक रात कहीं पे रुकना है उस एरिया में जू में, तो उसको कितने हजारों रुपए देने पड़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जब जुहू की स्थापना की तो इतने महान तरीके से, उस समय हालांकि उस कोई भी नहीं आता था, सभी ये चिंता में थे कि इतना बड़ा मंदिर ऐसी जगह पर बनाया है, कोई आएगा क्या। तो मंदिर बनने के पश्चात एक बार लोकनाथ महाराज को श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि आज की क्लास में कितने लोग आए, तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के सुबह के क्लास में 50 लोग थे। प्रभुपाद ने कहा, 50 पीपल केम, 50 लोग आए, हमें कुछ लग भी नहीं रहा है। लेकिन उस समय 50 लोग, बहुत बड़ा क्राउड, गर्दी भीड़ थी। आज यदि जुहू में जाओ, एक मिनट में 50 लोग एंट्री करते हैं, एक मिनट में वो डोर से। आपको विश्वास नहीं होगा, एवरी संडे, हर संडे जुहू में 1,00,000 विजिटर्स आते हैं। श्री राधा रास बिहारी, श्री राधा रास बिहारी जी की आज 1,00,000 एवरी संडे आते हैं। तो 20 साल पहले जो एक भागवतम क्लास सुबह के कार्यक्रम में 50 लोग, आज एक मिनट में रोज 50 लोग एंट्री करते हैं इस गेट से दिन में। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने अपने प्रचार के द्वारा महानता प्रस्थापित की और उसके साथ साथ मधुरता। राधा गोपीनाथ मंदिर, वहां पर एक और घटना इस प्रकार की हुई कि बंबई की एक युवती जो कि वहां पर किसी कंपनी में काम किया करती थी, तो उसके घर उसकी जो भाभी थी उसने एक शिशु को जन्म दिया। तो अब इसे लगा कि अब मैं कंपनी में काम करती हूं, 8 घंटा घर भी आऊंगी और फिर ये छोटा बच्चे का सब काम करना पड़ेगा। तो परेशान थी, परेशान, वो कही कि मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं करना, वो मुझे देने वाले हैं सब कुछ करने के लिए, तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तो कहां जाएगी फिर? तो बस में बैठ गई, जहां कहीं पर भी ये बस ले जाए मुझे वहां पर। तो बस नंबर 64, उसका लास्ट स्टॉप बाबुलनाथ, बाबुलनाथ पर बस रुकी और वो फिर ऐसे ही कंफ्यूज्ड घूम रही है, अंधाधुन कहां पर भी उतर कर चल रही है। चलते चलते राधा गोपीनाथ मंदिर में एंट्री किया उसने। राधा गोपीनाथ मंदिर में एंट्री किया और शयन दर्शन चल रहा था। तो शयन दर्शन इतना उसे अच्छा लगा तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई वो दूसरे दिन। अब देखिए, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चौपाटी लेके जाते हैं, लेकिन वो यहां मंदिर नहीं लेके आते, उधर जो अपना चौपाटी मंदिर है उधर। लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को शयन दर्शन के लिए लेके आई। तो वो बैठा हुआ शयन दर्शन में कीर्तन सुन रहा है, उसके बगल में एक बंगाली कोई डिवोटी वो जोर जोर से हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, बंगाली था तो अब ये एकदम वो साउथ बॉम्बे का थोड़ा मॉडर्न टाइप लड़का, तो वो जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, ये लोग यार, ये व्हाई आर दिस गाय वाज सेइंग हॉरिबल हॉरिबल, बोलता है एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, व्हाई इज सेइंग हॉरिबल हॉरिबल। जैसे हमारी ट्रेनिंग में एक हमारे घोष दादा थे, तो डिफेंस का होता ना सीएसडी कैंटीन सुना, उसमें अलग अलग सब आते रहते हैं आइटम्स। तो वो सीएसडी कैंटीन विजिट करके आया, जैसे हमारे हॉस्टल में आया, अरे आज सीएसडी कैंटीन में घोड़ी आई, घोड़ी। हमने कहा घोड़ी आई यार, हमने ये सुना था मिक्सर आता है वहां, प्रेशर कुकर आता है, घोड़ी। बोला हाँ घोड़ी। बोला रखा कहां घोड़ी को? बोला शेल्फ में। बोला घोड़ी को शेल्फ में रखा? और करीब 10 मिनट तक वो बताया जा रहा है कि हमसे कितने की घोड़ी है। बोला 1,000 की। 1,000 में घोड़ी? तो हम लोग सब बहुत उत्सुक हुए कि देखने के लिए। फिर सब बता रहा था कलर क्या है घोड़ी का, कितने की है घोड़ी, कहां रखी है घोड़ी। फिर अंत में पता लगा कि HMT वॉच। तो ऐसे ही ये लड़का वहां पे बैठा शयन दर्शन में और हरी बोल हरी बोल। तो वो बोल रहा है अरे वो उनके तो कपड़े नीले पीले, तो नीली बोल पीली बोल या हरी बोल क्यों बोल रहे हैं? और फिर वो वहां के जो गेस्ट रिसेप्शन उनसे मिला तो उन्होंने फिर सब कुछ अपना क्रैश कोर्स दे दिया उनको। और माला, तो जब माला दी करने के लिए तो पूरी 108 मणि की माला, तो उनके लिए वो बोले कि देखो भाई मैं रोज जिम जाता हूं, मैं 2 घंटा डंबल उठा सकता हूं, लेकिन ये आपका ना 108 बार करना ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मुझे कुछ इजी प्रोसेस दो, शॉर्टकट। तो अब शॉर्टकट क्या दे भाई, तो उसने ढूंढ लिया शॉर्टकट। उसने क्या किया कि वो जो बीडबैग दी थी उसका जो काउंटिंग बीड्स है वो निकाला और काउंटिंग बीड्स पे करता था वो चैंटिंग। तो काउंटिंग बीड वो बोला ये सबसे अच्छा है काउंटिंग बीड्स पे। और फिर धीरे धीरे अब वो चैंटिंग शुरू हुई तो उसको कोई पूछता था कितना माला करते, 32 माला करता हूं, एकदम घर से बोलता अच्छा 32 माला करता हूं। तो इसलिए तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला, कोई यदि काउंटिंग बीड पे भी, लेकिन वो भी गर्व से बोल सकता है कि मैं कितना 32 माला करता हूं। तो इससे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कल से आप अपना काउंटिंग बीड पे शुरू कर दो। तो ये अब इतना वो सीरियस हो रहा है और ये लोग दोनों भक्ति में, तो इनके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण अज्ञात सकृति जिसे कहते हैं, अनजाने में अज्ञान में ये भगवान श्री कृष्ण या इस्कॉन के भक्तों के संपर्क में आए और इतनी प्रगति कर रहे हैं। तो यदि हम इस्कॉन में भी देखें तो कितना लोग संपर्क में आते हैं, और जैसे कल हमने वो श्लोक लिया था अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्या भ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्य, हम की दो उंगली कि हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो यदि हम देखें कि हमारा जो प्रयास है, हालांकि हमारे प्रयास में भगवान भी यदि देखें हमारा प्रयास, क्या वो ठीक प्रकार से वो पूरी एक उंगली है? वो पूरी एक उंगली भी नहीं हमारा प्रयास, उसमें भी बीच में जब करते समय नींद आती है, प्रवचन सुनते समय कभी सेलफोन बजता है, कभी खुजली होती है, कभी नींद आती है, कभी बगल वाला सो रहा है, कभी हम सो रहे हैं, कभी बाहर कोई बच्चा भाग रहा है, तो यहां वहां। तो हमारा जो श्रवण कीर्तन है, हमारा जो प्रयास है, उसमें भी कितने त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि भक्तों के द्वारा, ठीक है कम से कम तुम थोड़ा बहुत जो भी त्रुटियों के साथ प्रयास तो करते रहो। इसलिए ये जो कार्तिक का महीना आज का आखिरी दिन है, तो हमारे लिए यही संदेश है, भगवान श्री दामोदर का यही संदेश हमारे लिए है कि चाहे हम गिरते लड़खड़ाते कि ये न के न प्रकारे न, हम भक्तों के संग में कुछ ना कुछ करते रहें। इसलिए पूतना के संदर्भ में भी कहा था कि पूतना चाहे किसी भी उद्देश्य से आई हो, पूतना ने कम से कम भगवान श्री कृष्ण से अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। तो ही भगवान बता रहे हैं कि ये न के न प्रकारे न जस्ट गेट कनेक्टेड टू कृष्ण, कम से कम उतना हमें करना है। जैसे रामानुजाचार्य वो तो कहते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सको तो अपने इस काया को लो, उठाओ शरीर को उठाओ और जाके भक्तों के बीच में फेंक दो, वो कहते हैं। कम से कम उतना तो हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत, जैसे एक बार श्रीमान संता सिंह उनकी हालत ऐसी थी, तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मुझे एक करोड़ रुपए की लॉटरी लगा दो। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे, चार साल प्रार्थना की कि मुझे लॉटरी लगाओ, मुझे लॉटरी लगाओ, और भगवान लॉटरी नहीं लगा रहे। तो उन्होंने अनशन कर लिया कि लॉटरी नहीं लगा रहे। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा, ओए खोती दे पुत्र, एक बार टिकट तो खरीद। तो आके खाली प्रार्थना कर ला लॉटरी, तो टिकट तो खरीद, दिलाऊंगा मैं तेरे को लॉटरी। तो वैसी हमारी हालत है, हम केवल भगवान कृपा, भगवान कृपा। तो भगवान बोलते हैं, अरे कुछ कुछ तो कर, एक माला तो उठा, कम से कम एक कार्यक्रम में तो आ, कम से कम प्रसाद तो खा, कुछ तो कर। तो वो श्री दामोदर, इनका संदेश है हमारे लिए कि हम हमारी तरफ से प्रयास करते रहें। और यदि भगवान जो कहते हैं अनन्य चिंतयंतो माम, यदि अनन्य तरीके से हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे और भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अवश्य ही भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। श्री राधा दामोदर भगवान की।
श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।